آپ کی توجہات گزارے مقصود کر رہا ہوں. وہ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ خصوصاً نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ہمیشہ کوشش یہ کیجیے کہ دین کو تحقیقی بنیاد پر سیکھنے کی کوشش کیجیے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے آپ کا, ابھی میں آپ کو ایک محاسبہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ سال میں کتنے گھنٹے کتنے دن ہیں, 365 دن ہیں. اچھا آپ جو اس فرش ادا پر آئے ہیں, آپ کا خطیب ممبر سے جو تعلق بنا ہے, آپ کا جو ممبر سے تعلق بنا ہے وہ سال کے کتنے دن ہے, 10 دن. محرم کی جو مجالس ہوتی ہے اسی حد تک آپ کا دین سے رابطہ ہے. اچھا اس 10 گھنٹوں میں ایک مجلس تو آپ آخری شام غریبہ کی ہٹا دیں, کتنے گھنٹے بچے ہیں, 9. ان 9 گھنٹوں میں 10-15 منٹ آپ مصائب کے ہٹا دیں, کتنے بچے ہیں, ہر گھنٹہ 40 منٹ کا جس میں آپ کچھ دین کی معلومات لیتے ہیں. اچھا 40 کو ضرب دیجیے 9 سے, کتنا بنے گا, 360. یعنی آپ کا 365 دنوں میں دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کل وقت صرف 360 منٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے سال میں کتنے منٹ ہوتے ہیں, پورے سال میں 225,000 منٹ ہے. جا کے کیلکولیٹر کر لیجیے گا, پورے سال میں 225,000 منٹ ہے. 225,000 منٹ کا 1% کتنا بنے گا, 5,250. یعنی آپ 5,250 جو 1% بنتا ہے, آپ اپنے پورے سال کا 1% بھی دین کو سیکھنے کے لیے نہیں دے پاتے. ایسا یا نہیں, ابھی آپ کا دین سے رابطہ بنا ہے, کس لیے بنا ہے, کیونکہ عقیدت سے اس اظہار محبت کے لیے آئے ہیں جو آپ اہل بیت سے ادا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دین سے کب رابطہ بنے گا, مولانا کو وہ کریں گے, مولانا ہمارے یہاں فلاں میت ہو گئی ہے, آپ جو ہے وہ سارے ثواب پڑھنے آ جائیے, مولانا ہمارے یہاں نکاح کروانا ہے آپ نکاح کرانے آ جائیے, مولانا طلاق کروانی ہے آپ طلاق کروانے آ جائیے. کتنے لوگ اس لیے رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں دین سیکھنا ہے, دین سکھانے کے لیے آ جائیے. کوئی بھی اگر سید الشہداء پر ایک مکھی کے پر جتنا بھی گریا کر لے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. غلط حدیث بیان کر رہے ہیں, نہیں غلط حدیث بیان نہیں کر رہے, صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں. اور ایسی حدیث ہے جو کثرت سے شاید تواتر کی حد تک آ جا سکے, جو معصومین کی جانب سے وارد ہوئی ہے. دوسرے مولانا آتے ہیں, دوسرے مولانا کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہماری شفاعت سے محروم ہے, اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے. ایک امام کہہ رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی گریا کیا سارے گناہ بخش دیے جائیں گے, جھوٹ کہہ رہا ہے نہیں سچ کہہ رہا ہے. دوسرا آگے کہہ رہا ہے, دوسرا مولانا آگے کہہ رہا ہے کہ مولا یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا بھی سمجھے گا تو اس کے گناہ نہیں بخشے جا سکتے, اس کو شفاعت نہیں ملے گی. کیا وہ غلط کہہ رہا ہے, نہیں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. مسئلہ کہاں پر آیا, اچھا اب جب یہ والا مولانا نماز کی اہمیت اور اس کی تلقین اور تاکید کرتا ہے تو یہ والا طبقہ اس کا مخاطب نمازی بن جاتا ہے, وہ عزاداری کو کم سمجھتا ہے. یہ والا طبقہ اس مولانا کا مخاطب عزاداری کی اہمیت کو جانتا ہے, وہ والا طبقہ نمازی کو کم نماز اور نمازی کو کم اہمیت سمجھتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے, نتیجتاً معاشرے میں دینی طبقہ دینی طبقے سے ڈرتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے, ایک سلام پڑھی محمد عالم محمد. معاشرے میں دینی طبقہ دینی طبقے سے لڑ رہا ہوتا ہے, نمازی عزادار سے لڑ رہا ہوتا ہے, ایک عالم کا ماننے والا دوسرے عالم کے ماننے والے سے لڑ رہا ہوتا ہے, ایک مجتہد کا مقلد دوسرے مجتہد کے مقلد سے لڑ رہا ہوتا ہے. کیوں ہوا یہ, اس لیے کہ دین کو عقیدتی بنیاد پر حاصل کیا لیکن تحقیقی بنیاد پہ حاصل نہیں کیا. میں آپ اسی کے ساتھ دے دوں, مولانا رومی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں ترکی زبان کے, قاضی زبان کے, آپ سب جانتے ہیں. ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن سے متاثر ہوئے تھے وہ مولانا رومی مولانا مانوی تھے. ان کی سب سے مشہور کتاب جو شاعری کی ہے اس کا نام مثنوی ہے. اس مثنوی میں مولانا رومی اس حکایت کو بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے, ایک صاحب نے एक हाथी को एक खूब अंधेरे कमरे में रख दिया। एक हाथी लाए, हाथी को खूब अंधेरे कमरे में रख दिया। कुछ बुलबुल ऐसा कि हाथ सो हाथ को हाथ सुझाई ना दे, इतना खूब अंधेरा। और बाहर वाले लोगों से कहा कि सब आओ और मुझे बताओ कि अंदर जो है वो क्या शय पड़ी है। तो एक साहब अंदर आए, उन्होंने उस हाथी के पैरों पे हाथ रखा और एक ठोस बल महसूस किया, एक चौड़ी चीज महसूस की। बाहर आए, कहा कि अंदर जो है वो सुतून पड़े हैं, मीनार पड़े हैं, पिलर्स पड़े हैं। दूसरे साहब वो बाहर चले गए, दूसरे साहब आए, दूसरे साहब आके उन्होंने हाथी की पूंछ पे हाथ रखा। बाहर आए, कहा अंदर जो है वो कोई मसनद कोई कुर्सी पड़ी है। तीसरे साहब वो बाहर चले गए, तीसरे साहब अंदर आए, उन्होंने हाथी की सूंड पे हाथ रखा, कहा अंदर जो है वो कोई पतनाला पड़ा है, कोई पाइप पड़ा है। हर बंदा आता गया, चूंकि उस हाथी के सिर्फ एक उज्र सिर्फ नाकिस वजूद पर हाथ रखा था, उसे महसूस किया था, लेकिन बाहर आके क्या कहता था, नाकिस रह देता था। कोई कहता था मसनद पड़ी है, कोई कहता था सुदूर पड़ा है, कोई कहता था बरनाला पड़ा है। एक और शख्स जो ज़हीन था, जो क़दीम था, जब वो अंदर गया तो उसने उस वजूद के उस शय के जो अंदर पड़ी थी उसके जब तमाम तर आज़ा पर हाथ रखा और बाहर आकर कहा कि अंदर ना सुदूर है, ना मसनद है, ना बरनाला है, बल्कि अंदर हाथी मौजूद है। अब आपको फर्क समझ आया क्या हुआ? फर्क क्या था? पहले वाले अपराध नाकिस राय सही, नाकिस राय आदर देते थे। बाद वाला शख्स आया, उसने अकीदती बुनियाद पर नजर नहीं दी बल्कि तहकीकाती बुनियाद पर नजर दी। जब तहकीकाती बुनियाद पर नजर दी तो जामे नजर दी, सही नजर दी, ठीक नजर दी। आज क्या जरूरत है नौजवानों के लिए कि दीन को तहकीकाती बुनियाद पर सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने बयान किया कि इमाम की हदीस है कि जो नमाज को कम समझेगा हमारी शफात से महरूम है, उसी इमाम की हदीस है कि कोई जरा बराबर भी गिरिया कर ले वो शफात उसके तमाम गुनाह माफ किए जाएंगे, ना ये हदीस गलत है ना ये हदीस गलत है। दोनों हदीस सादिक है, इमाम सादिक से नकल हुई है। और हमारा तो अकीदा यह है कि ना एक इमाम के अखबार में कोई तनाकुस होता है, ना एक दूसरे इमाम के दूसरे इमाम के कौल के साथ कोई तनाकुस होता है, क्योंकि इनमें अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, ये मेरे और आपके लिए हैं जो हमें 14 हस्तियां नजर आ रही है, लेकिन इनकी हकीकत को देखा जाए तो ये सब ज़ाते इलाही की तजल्लियों का नाम है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त
सरकार ने सबसे पहला बयान क्या दिया, कहा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मशहूर हदीस है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। जब आप मुझे एक हिसाब से बताइए कि आज अगर आप 100 मरतबा 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए और कोई इबादत अंजाम ना दीजिए तो क्या कामयाब हो जाएगी? मैं नमाज ना पढ़ू, मैं विलायत का दम ना करूँ, मैं सारे मुबद्दत ना करूँ, मैं लेवेट की इताद ना करूँ, मैं बकिया इबादत ना करूँ, ना तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूँ, तो क्या मैं कामयाब हो जाऊँगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? तेरा रसूल ने गलत कहा था। अरे यहाँ तो बिल्ला में जाले का सजी हो, बिल्ला में जाले रसूल ने से गलत कैसे? तो फिर क्या बात है? असल बात यह है कि उस जमाने में जब रसूल ने ये कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, उस वक्त तमाम तर अहमियत इस ला इलाहा इल्लल्लाह को कहने की थी। इसी वजह से देखिए जनाब अम्मार यासिर के वालिद जनाब यासिर जनाब सुमैया, उस वक्त कोई इबादत फर्ज नहीं की गई थी, उस वक्त रोजे और नमाज फर्ज नहीं किए गए थे। महज ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जुबान से जारी करने का मतलब क्या था? यानी आप अपनी शहादत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हैं। महज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। लेकिन जब यही इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह फर्ज हुआ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह फर्ज हुआ, जब नमाज इबादत मनासिक हज ज़कात खूब सा बिल मालूम नहीं नहीं मुकर फर्ज हुआ, जब सिलसिला चलता रहा, पहले इमाम की इमामत फर्ज हुई, दूसरे इमाम की इमामत फर्ज हुई, तीसरे इमाम की इमामत फर्ज हुई, छठे सातवें आठवें इमाम की इमामत फर्ज हुई, यही आठवें इमाम जब निशापुर से गुजरे और लोगों ने कहा कि फरजंदे रसूल आप आठवें इमाम हैं, आप सिलसिले इमामत की आठवीं कड़ी हैं, आप जो है वो हमें कोई नसीहत कीजिए, कोई अपने जन से हदीस सुनाइए। तो मेरे मौला ने हदीस क्या सुनाई कि मैं इस रिवायत को नकल करता हूँ अपने वालिद से, वो अपने वालिद से, वो अपने वालिद से, वो रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह जिब्राइल से, जिब्राइल खुदावंद मुताल से, फिर इसमें परवरदिगार आलम कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा खिला है, जो उसमें दाखिल हो गया वो निजात पा जाएगा। मौला कुछ सवारी को आगे बढ़ाया, कहा कि ये फिक्र मत करना कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आज कह दिया तो काफी हो जाएगा, कहा नहीं, वो मेरी शुरू देहा व अना मेरी शुरू देहा, कि आज के जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की शर्तें हैं और मैं अली इब्ने मुसर रजा जुमला शर्तों में से एक शर्त हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, क्या हुआ आठवें इमाम के जमाने में? अब आठवें इमाम के जमाने में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं है, अब आठवें इमाम के जमाने तक आपने मौला अली की भी विलायत का इकरार करना है, इमाम मुज्तबा की भी, सैयदुल शुहदा की भी, आठवें इमाम तक पहुंचना है। क्योंकि तीन एक जाने तर सूरत हाल में हमारे सामने आ गया है। अब मुलाहिजा फरमाइए हमारे सातवें इमाम इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम आप जानते हैं कि मौला जी एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैद खाने की सुहबत में गुजरा रहे हैं, जिसे लगभग सारी अगर मौला जी तमाम तर कैद के जमाने को मिलाया जाए, फासले फासले से कैद हुई है लेकिन सारे जमाने को मिलाया जाए तो तकरीबन 10-15 साल मौला कैद खाने में जिंदगी गुजारी है। अब इस आलम में इमाम अपने शियों से कैसे रابطہ बरकरार रखते थे? इमाम का रابطہ बरकरार रखने का तरीका वकालत था, यानी इमाम ने अपने कुछ जानशीनों को, कुछ वकला को, कुछ नाइबीन को मुकर्रर किया था और उन मखसूस नाइबीन के जरिए से इमाम अपने शियों से रابطے में रहते थे। अब जब शिया रابطے में रहते थे दो तरफ से मामला था, शिया कुछ सवाल पूछते वो नायब इमाम को आके सवाल बताता, इमाम जवाब देते, वो नायबी वो वकील उस सवाल के जवाब को लोगों तक पहुंचाते, और दूसरी जाने से लोग जो खुम्स निकलता था, जो इमाम का हक बनता था माल में से, जो पांचवा हिस्सा बनता था, जो वजूहात शरीक थे वो उस वकील को देते थे, वकील इमाम को पहुंचाता था। सातवें इमाम चूंकि एक बड़ा हिस्सा सातवें इमाम का कैद खाने में गुजरा, तो नतीजा ये हुआ कि वकला के पास, इमाम के पास, वकीलों के पास बहुत बड़ा माल माली रकम इमाम पास वकीलों के पास हासिल हुई, जिनमें से एक शख्स का नाम है अली इब्ने अबी हमजा बताइनी। ये अली इब्ने अबी हमजा बताइनी इसके पास सातवें इमाम के जो पैसे थे उसकी कुल तादाद 20,000 दीनार इमाम की मिल्कियत इसके पास पड़ी थी। इसका एक और दोस्त उस था, इमाम का ही सहाबी था, इमाम का ही वकील था, जिसका नाम था ज़ियाद इब्ने मरवान अल-कंदी, ज़ियाद इब्ने मरवान अल-कंदी, जिसके पास 70,000 दीनार इमाम की अमानत पड़ी थी। इमाम तो खैरखाने में थे। तीसरा एक शख्स है जिसका नाम है उस्मान इब्न ईसा रवासी, उसको भी इमाम का वकील था, इमाम का नाइब था, इमाम का जानशीन था, उसके पास भी इमाम की बहुत बड़ी रकम मौजूद थी। अब इमाम के खाने में थे ये अफराद, ये इमाम के वकील थे, ये इमाम को ये रकम पहुंचा नहीं सके। इमाम कुछ अरसे में इमाम की शहादत हो गई, मंसूरे दवा गई, हारून इब्न रशीद के जरिए से सिद्दीक ने चाहे के जिंदा में इमाम की शहादत हो गई। आठवें इमाम मनसबे इमामत पर फायज हुए, आठवें इमाम ने कहा कि ए उस्मान इब्न ईसा रवासी, ए अली इब्न अबी हमजा रदाई, ए ज़ियाद इब्न मरवान अल-कंदी, जो मेरे वालिद की अमानत तुम्हारे पास पड़ी है वो मुझे वापस करो। लालच की वजह से इन्होंने नजरिया बनाया, तवज्जो फरमाइएगा, नजरिया क्या बनाया, देखिए कितना मुकद्दस नजरिया बनाया, कहा कि सातवें इमाम की शहादत हुई ही नहीं है बल्कि वो पर्दे गैब में चले गए। नहीं देना पड़ेगा, ये पैसा हमारे पास रहेगा, अब ये पैसे पे कब्जा करके बैठे। हत्ता के इन्होंने बाद सातवें इमाम के सहाबी, जैसे यूसुफ इब्न अब्दुल रहमान जो इनसे कहता था कि तुम्हारे सामने है कि सातवें इमाम शहीद हो गए, सातवें इमाम बोले बगदाद पे उनका जनाजा था, सातवें इमाम का तरका और मीराज जो है उनकी औलाद में तकसीम हो चुकी है, ये सारे मंजर तुम्हारे सामने है। जब यूसुफ इब्न अब्दुल रहमान ने अपनी इज्तिमाई शख्सियत को इस्तेमाल करके इन अफराद को, यानी अली इब्न अबी हमजा बताई नहीं, इन्हें भी नकाब करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें इतना क्या मसला पड़ा है कि जो आठवें इमाम की इमामत का डंका बजा रहे हो, आओ तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें 10,000 दीनार देंगे, तुम्हारी ज़बान खामोश करा देते हैं। यूसुफ इब्न रहमान को खरीदने की, वो भी सातवें इमाम के साथ ही थे, बड़े साथ ही थे, उन्हें खरीदने की कोशिश की, क्योंकि क्योंकि माल दुनिया से मोहब्बत हो गई। अब मुलाहिज़ा फरमाइए, जो मैं अपनी बात में जाना चाह रहा था कि दीन को जब तक जामे सूरत में नहीं सीखा जाएगा, नतीजे तक माशरे में दीन के जरिए से तीन-चार अफराद इख्तलाफ करते हैं। अब इमाम जब 201 हिजरी में मामून अब्बासी ने अपने कारिंदों को भेजा कि इमाम को मदीने से खुरासान बुला लाओ, मैं इमाम को वली अली लेना चाहता हूँ, तो जब इमाम मर्द के मकाम पर पहुंचे तो इमाम का साहबी हसन इब्ने अली वर्षा, इमाम ने हसन इब्ने अली वर्षा को बुलाया और कहा कि इब्ने वर्षा, तुझे मालूम है कि इस वक्त अली इब्ने अबी हमजा बदायनी इस दुनिया से हलाक हो गया। रसूल कैसे आप फरमा रहे हैं? कहा मैं तुझे बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उसके जो रिश्तेदार थे अकरमा थे, उन्हें उसे सुपुर्द लहद किया, सुपुर्द लहद करने के बाद दो फरिश्ते आए, दो फरिश्तों ने आकर अली ने भी हमजा बताइनी से पूछा और पूछा क्या है, अली ने भी हमजा बताइनी हमें ये बताओ मन रब को तेरा परवरदिगार कौन है, उसने कहा मेरा परवरदिगार खुदा वाहदहु ला शरीक है। फरिश्तों ने पूछा अली इब्न अबी हमजा बताइनी मुझे ये बताओ कि मेरा रसूल कौन है, उसने कहा कि मेरे रसूल खातिमुल अंबिया है। कहा तेरा पहला इमाम कौन है, कहा अली हैदर करा। कहा दूसरा इमाम कौन है, कहा हसन मुस्तफा। कहा तीसरा इमाम कौन है, कहा सैयद शोहदा। कहा चौथा इमाम कौन है, कहा ज़ैनुल आबिदीन। कहा पांचवा इमाम कौन है, कहा बाकिरुल उलूम। कहा छठा इमाम कौन है, कहा जाफर सादिक। कहा सातवां इमाम कौन है, कहा मूसा काज़िम। जब फरिश्तों ने पूछा तेरा आठवां इमाम कौन है, अब उसकी जबान लजलजाने लगी, अब उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। जब फरिश्तों ने देखा कि ये मुकम्मल इमामत के इकरार के साथ नहीं आया, उसकी पुश्त पर इतने आतिशी गुर्ज मारे कि उसकी कब्र कयामत तक इबरत का निशान बन गई है। अब क्या बताना चाह रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाइए, उस अदीब ने भी हमसे बताया नहीं, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा है, रसूल की रिसालत का इकरार कर रहा है, मौला की विलायत का इकरार कर रहा है, लेकिन चूंकि पूरे दीन को कबूल नहीं किया लिहाजा आधा दीन भी जाया हो जाता है। क्या जरूरत है कि इस रात की सवाल बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और सवाल पर दिए मोहम्मद वाला न्यास सफर किए हुए इंसान दीन को जाने बुनियाद पर, दीन को तहकीकाती बुनियाद पर, दीन के तमाम तर अतराफ को अकनाफ को समेट कर दीन को समझने की कोशिश करें। और उसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपके सामने बयान करूं, बहुत आसान सा तरीका, वो क्या है कि जब माहे अज़ा खत्म हो जाए, सो बढ़ जाए, उसके बाद जिन उलमा से आपने मिंबर पे गुफ्तगू सुनी थी, जो उलमा आपसे रास्ते में है, उन उलमा को फोन कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि आप इस मौजू पर तैयारी करके आए और उस मौजू पर हमें इस्लाम की जामे नजर पेश कीजिए। उससे क्या होगा, अब आप मैं आपको एक और बात सुना, बात से बात निकलती जा रही कि अल्लामा तालिब जोहरी खुदावंद को ताल उन्हें गरीब रहमत करे, एक इमाम मारा है, एक महफिल है मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी, अब तो शायद खत्म हो गई है, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो अल्लामा तालिब जोहरी वहां पे माने कुमारे के रमजान के तफसीर कुरान के दर्स दिया करते थे। तो उनका उमूमी तरीकेकार, उमूमी तरीकेकार ये होता था कि जब मिंबर से तफसीर कुरान का दर्स दे दिया, अब मस्जिद जैसे ही ज्यारत खत्म हो गई, तबर्रुक पड़ गया, फर्श पर बैठ जाते थे। क्यों फर्श पर बैठ जाते थे, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे सवाल थे जो लोग मिंबर पर नहीं पूछते थे, मिंबर पर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों से बयान नहीं की जा सकती थी, नीचे आते थे फर्श पर बैठते थे ताकि तमाम तर शर्म के तकल्लुक के हिजाब पर तरफ हो जाए, वो आराम से अपनी बात डिलीवर कर सके, लोग आराम से अपनी बात पूछ सके। नतीजा क्या होगा, नतीजतन ज़हनी रोश हासिल होगा, नतीजा क्या होगा, नतीजतन इस्लाम के तमाम जामियत के साथ समझा जा सकेगा, नतीजतन क्या होगा, नतीजा ये होगा कि इस्लाम माशरे में दीनी तौर पर इंसान में मैच्योरिटी और तरक्की आएगी। लिहाजा उलमा से इस राबते को बरकरार से निकाह की हद तक, तलाक की हद तक, जनाजे की हद तक, मजलिस की हद तक, इसाले सवाब की हद तक, फातिहा खानी की हद तक राबता न रखें। तो उलमा से कहें कि पता हमें बताएंगे शफाअत के बारे में इस्लाम की क्या नजर है, तौहीद के बारे में इस्लाम की क्या नजर है, आइमा की इस्मत के बारे में, इमामों की इस्मत के बारे में, मासूमियत के बारे में इस्लाम की क्या नजर है, और जामे नजर तहकीकाती नजर आकर बयान करें, पढ़ें, तैयारी करें और हमारे सामने आकर बयान करें। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है, जो आपके नजरियात हैं, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी बात इस हवाले से जारी थी कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि इन्ना हदीना उस सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। दीन जो है वो मैंने आपके सामने जाहिर पहली उसी गुफ्तगू में कहा था कि दीन जो है वो कोई मीठी गोली का नाम नहीं है, दीन जिम्मेदारी का नाम है, दीन मसूलियत का नाम है, दीन एहसास जिम्मेदारी कहलाता है, दीन इंसान को जिम्मेदार बनाता है। एक गुलाम एक बादशाह था, उसने बाजार से गुलाम खरीदा, लोगों से पूछा कि मुझे वो गुलाम बताओ जो बहुत होशियार हो, बहुत ज़हीन हो। उस ज़हीन गुलाम को लाया, खरीदा, अपने पास रखा। अब वो गुलाम जो था वो ज़हीन भी था और परवरदिगार आलम का इबादत गुजार बनता था। नमाज शब का वक्त आया, इसने कहा कि मैं अपने मौला को, अपने आका को जगाता हूँ। अब उसको जगा रहा है, नमाज शब का ऐसी बात है, शैतान उस वक्त इंसान के पैर दबाना शुरू करता है कि थोड़ा और सो जा, जितना पुरसुकून नींद उस वक्त आती है ना, उसके पहले आती है ना बाद में आती है। शैतान बड़ी मालिश कर रहा होता है, बड़ी मसाज कर रहा होता है, बड़ा पैर दबा रहा होता है कि इंसान को जो है वो आराम से सोता रहे। एक बजे पैर नहीं दबाता, रात 12 बजे पैर नहीं दबाता, रात 9 बजे पैर नहीं दबाता, लेकिन जैसे ही फजर की अज़ान से आधा घंटा पहले पहुंचे, 3:30-4:15 का वक्त हुआ, शैतान जो है वो पैर दबाना शुरू कर देगा। दोबारा अब वो नमाज शब का वक्त आया, तो उसने उस गुलाम ने, उस सही गुलाम ने अपने मौला को, अपने आका को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठा। कुछ देर बाद अजान फजर का वक्त हुआ, इसने कहा कि अजान फजर का वक्त हो गया है, उठ जा। उसने कहा अल्लाह करीम है। क्या कहा, अल्लाह करीम है। हम भी कहते हैं ना, आपसे कहा जाए कि भाई वालिदैन की इताअत करो, अरे नहीं नहीं मसला नहीं है मौला वाले से, नमाज पढ़ो, नहीं नहीं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है मौला वाले से, भाई आओ आज़ादारी में आओ, आओ मजलिस सुनो, आओ सीना जदी करो, नहीं नहीं जरूरत नहीं है मौला वाले से, आओ मोमिनीन को इन्फाक करो, सदका दो, खैरात दो, मोमिनीन की मुश्किलात हल करो, अरे नहीं मसला नहीं है मौला वाले से। अब वो मौला वाले समाज कहते हैं, वो कह रहा था खुदा करीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह देख लेगा। जमात सब के लिए उठाया कहा अल्लाह करीम है, फजर की अजान का वक्त हुआ फजर के लिए उठाया कहा अल्लाह करीम है, फजर की कजा के वक्त पर था पहुंचा तुलुए आता का वक्त आ पहुंचा उसको उठाने के लिए गया, नमाज फजर है नमाज फरीजा है वाजिब नमाज है उठाना है, एक मतलब उठाया कहा मसला नहीं है अल्लाह करीम है खुदा करीम है मौला वारिस है। अच्छा कहा अब नमाज फजर कजा हो गई, अब इस गुलाम ने कहा कि मैं अपने साथा को इस नुक्ते की जाने तवज्जो कैसे दिलाऊं कि मौला वारिस तो है, मौला सिर्फ मेरा और आपका वारिस नहीं मौला पूरी कायनात का वारिस है, लेकिन इतना तो देख लीजिए कि अगर मौला को वारिस बना रहे हैं तो कोई अच्छी चीज उसके तौर पर दे रहे हैं या अपने गुनाहों में मौला के सपोर्ट कर रहे हैं। इंसान जब किसी बड़े बादशाह के पास जाता है तो किसी बड़े इंसान के पास जाता है उसे तोहफा देता है तो ऐबदार चीज तोहफे में देता है या बेहतरीन शय तोहफे में देता है, ये जवाब दीजिए मुझे। आप जब बहुत बड़े बादशाह सदर पाकिस्तान के पास वजीर आजम के पास जाएंगे तो क्या उसके पास फटे हुए कपड़े लेकर जाएंगे, क्या उसके पास गंदीदा खाना लेकर जाएंगे या बेहतरीन मिठाई लेकर जाएंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि बड़े इंसान के पास जा रहा हूँ, बड़े इंसान की अजमत का तकाजा यह है कि अपने पास मौजूद बेहतरीन शय उसे हदिया करूं। तो जब आप मौला को वारिस बना रहे हैं तो क्या अपनी बेनमाजियों का मौला को वारिस बना रहे हैं, क्या अपनी टूटी फूटी इबादत का वारिस मौला को बना रहे हैं, क्या अपने नामे आमाल की स्याही का मौला को वारिस बना रहे हैं। इंसान आम इंसान के पास जाता है तो बेहतरीन चीज लेके जाता है, वो तो कायनात का मुश्किल कुशा है, उसके पास तो इंसान को बेहतरीन नमाजें देनी चाहिए, इंसान को चाहिए बेहतरीन रोजों का वारिस बनाए, इंसान को चाहिए बेहतरीन इबादत उसको सपोर्ट और उसको हदिया करे, तब जाकर कहे कि मेरा मौला मेरा वारिस है। अब इस गुलाम ने कहा कि इसे मैंने नमाज शब में उठाया, ये कह रहे अल्लाह करीम है, फजर की अजान का वक्त हुआ अल्लाह करीम है, फजर की नमाज खत्म होने लगी अल्लाह करीम है, हम इसको तवज्जो दिलाए तो कैसे दिलाए, सुबह हुई तो इस आका ने इसके मौला ने कहा इसके बादशाह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपनी जमीनों को विजिट कराता हूँ। अब जमीनों की विजिट कराने के लिए गया और कहा कि हम जो है वो इस जमीन में गंदम बोएंगे, बेहतरीन गंदम क्योंकि फसल गंदम की है मौसम गंदम का है, ये जमीन गंदम के लिए बेहतरीन काश्तकारी के लिए बेहतरीन है, हम जो है इसमें गंदम बोएंगे, गंदम के बहुत सारे बीज बहुत सारी बोलियां इस गुलाम को दी और कहा कि इस गंदम के बीज को यहाँ पर वजन पाछी कर दो। अब गुलाम जहीन था उसने कहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तो इसने वहां पर जौ के दानों को काज करना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं गंदम महंगा आइटम है अजनास में और जौ जो है वो हल्का और सस्ता आइटम है, अब उसने दिया था गंदम, उसने कहा जौ अच्छा जब फसल काटने का वक्त आया ये बादशाह अपने गुलाम के साथ उस मकाम पर पहुंचा अपनी खेती बाड़ी की जमीन पे पहुंचा, इसने देखा कि गंदम की तो फसल नजर ही नहीं आ रही, जो फसल है वो सारी जौ की नजर आ रही है, ये गुलाम पे बरहम हुआ गुलाम पे नाराज हुआ कि मैंने तुझसे कहा था कि तू यहाँ पे गंदम बोल रहा तूने जौ का दाना क्यों बोल दिया, तो इस गुलाम ने कहा मैंने ये सोचा कि खुदा करीम है जौ के दाने से वो गंदम निकाल देगा, खुदा करीम है इस जौ के दाने से वो गंदम निकाल देगा, तो वो बादशाह ने लगा कि क्या कभी ये मुमकिन है कि जौ के दाने से गंदम निकल आए, तो वहीं पर इस गुलाम ने अपने मौला को गिरफ्त में लिया कि जिस तरीके से जौ के दाने से गंदम नहीं आ सकती इसी तरीके से बेआमाली से जन्नत भी नहीं मिल सकती। सलाम करी मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा करीम है, लेकिन आप अपनी इबादत अंजाम दीजिए फिर कहिए खुदा करीम है, मौला वारिस है लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दीजिए फिर कहिए कि मौला वारिस है, आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश कीजिए फिर कहिए कि हमारा वारिस हमारा मौला आपका। इस अंदाज से देखिए करबला को इस रूह से देखिए कि हुसैन इब्ने अली के पास जो कुछ था हुसैन ने राह खुदा में दे दिया। एक मकाम आप करबला का जब से 28 रजब से शहीद शोहरा करबला से मदीने से उन्होंने बुरूज किया है कयाम किया है सफर किया है मक्का पहुंचे 3 शाबान को वहां से 8 जिलहज्जा को मेरे मौला ने मक्के से निकल कर मौला जो है वो कूफा की जाने जाने लगे, कूफा से करबला जाने लगे। इस पूरे सफर में जो तकरीबन 28 रोजे को शुरू हुआ है और 2 मुहर्रम को मेरे मौला करबला पहुंचे, इस तकरीबन ये 4 5 6 महीने का जो दौरानिया है, एक मकाम ऐसा नहीं ला सकते कि जहां पर मौला ने कहा कि मैं इस शय को राय खुदा में नहीं लूं। सिर्फ असहाब को नहीं दिया बल्कि अपने बेहतरीन नौजवानों को राय खुदा में कुर्बान। अब मेरे मौला ने कहा कि ऐ खुदा, मेरे पास बेहतरीन कुर्बानी अली असगर की थी, मैंने तेरी राह में दे दी। मेरे पास बेहतरीन कुर्बानी और मोहम्मद की थी, मैंने तेरी राह में दे दी। अब ऐ खुदा, तू मेरी कुर्बानियों की लाज रखना, तू मेरा वारिस है। खुदा ने क्या किया? खुदा ने हुसैन से कहा कि हुसैन, तूने अपना बेहतरीन सरमाया मुझे दे दिया, आज से मैं खुदा ही मुझे दे रहा हूं। खुदा ने हुसैन को सब कुछ बता दिया। करबला के शहीदों में एक अजीब बात आपको ये नजर आएगी कि जब भी हुसैन के पास कोई जंग की इजाजत लेने आता था तो हुसैन उसे इजाजत नहीं देते थे। जब अब्बास इजाजत लेने के लिए आए तो मेरे मौला ने कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। जब और मोहम्मद आए तो कहा कि और मोहम्मद, तुम्हारे वाली अब्दुल्लाह इब्ने जाफर है, उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे तुम्हें जंग की इजाजत दूं। जब कासिम आए तो कहा कि कासिम, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे जंग की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन करबला का एक शहीद ऐसा है, जब वो हुसैन के पास इजाजत मांगने के लिए आया कि बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए, एक मतलब हुसैन ने कहा, तखत तक वाला जी बेटा मैदान जंग की जाने आगे आगे बढ़ते चले जाओ। एक जुमला था हुसैन का, अली पर जाते जाते जरा अपनी टूटी अब्बा से इजाजत ले लेना। अली अकबर जाते जाते अपनी टूटी अब्बा से इजाजत ले लेना। अली अकबर अपनी फूफी के खैमे में आए, जब फूफी अम्मा से इजाजत मांगना चाहिए ना, तो मख्तल की ताबीर ये है कि सारी बीवियों ने अली अकबर को अपने हुसार में ले लिया। एक बीवी ने पैर को थामा, एक बीवी ने बाजू को थामा, एक बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहते थे, या अली हम गुर्बत ना, ऐ अली हमारी गुर्बत पर रहम खाओ, अरे हमें तनहा छोड़कर कहां जा रहे हो। रावी कहता है कि जब अली अकबर खैमे से बाहर आना चाहते थे, बार बार खैमे का पर्दा उठता था, बार बार पर्दे खैमा गिरता था, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन के खैमे से कोई लाशा निकल रहा हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, ऐसा लगता था कि जैसे कोई लाशा निकल रहा हो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बीबी हो मेरे लाल को रोको मत, मेरे लाल को जंग की इजाजत दे दो। अली अकबर बाहर आए, रावान पे सवार हुए। जब रावान कुछ कदम आगे बढ़ा तो अली अकबर ने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, कोई पीछे पीछे आ रहा है। जरा मुड़ के देखा तो देखा तो क्या देखा, एक बूढ़ा बाप है, कमर में हाथ रखी है और पीछे पीछे आ रहा है। एक मतलब अली अकबर ने कहा, बाबा आपने तो मुझे इजाजत दी थी। कहा अली अकबर, काश तेरा कोई कलाम साहब बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता, अरे शरीफी का आसा क्या होता है। अल्लाह अकबर, अजर को मार अल्लाह, अजर को मार अल्लाह। ऐ अली अकबर, मैं तुझसे पूछता कि ज़ईफी का आसा किसे कहते हैं, ज़ईफी का सहारा किसे कहते हैं। एक मर्तबा अली अकबर को रुखसत किया, अली अकबर मैदान में जंग में गए। रावी कहता है कि 120 अफराद को अली अकबर ने वासिले जहन्नम किया। 120 अफराद को जब वासिले जहन्नम किया तो प्यास की इतनी शिद्दत गालिब आई, एक मर्तबा अपने बाबा के पास वापस पलटे। बाबा से कहा, बाबा सुत्तुल अतशेटा का पता नहीं, वसितुल हदीदे का ढांचा नहीं, पापा मुझे प्यास की शिद्दत मारे देती है, पापा जरा का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता, क्या दो घूंट पानी के मिल सकते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अली अकबर करीब आओ, अली अकबर अपनी जुबान के मेरे जहन में रख दो। अरे जैसे ही शहजादे
کے زبان کو جہاں حسین نے رکھا فورا زبان کو کھینچ لیا کیا بابا آپ کا جہاں تو مجھ سے زیادہ سوکار ہے میرے بابا نے کہا لیے گھر آگے بڑھو ارے نام رسول اللہ تمہیں سیراب کرائیں گے
اجر و مال اللہ
علی اکبر نام رسول اللہ تمہیں سیراب کرائیں گے علی اکبر پھر میدان جنگ کی جانب آئے اب جب میدان جنگ کی جانب آئے نا تو علی اکبر جانتے تھے کہ اب کوئی پانی کی سبیل نہیں ہو سکتی تو اس پہلوانوں کو علی اکبر نے تحت دیکھ لیا جانتے ایک مجبور نے مسلسل علی اکبر کے جب جہاد کو دیکھا نا علی اکبر اسی طور پر مظلوم نہیں ہو رہے تھے کیونکہ حیدر کرار کے پوتے ہیں عباس کے بھتیجے ہیں حسین کے بیٹے ہیں حسین کے سب سے بڑے فرزند علی اکبر ہیں جب دیکھا کہ علی اکبر کو کس طریقے سے مغلوب کیا جائے ایک مغلوب نے کمیل کیا ایک ایسے مقام پر آیا کہ جب علی اکبر یہاں سے گزرے گے میں علی اکبر کی پشت پر مرچی کا وار کروں گا جب علی اکبر اس مقام سے گزرے تو اس مرہ ابن ملکہ سے مدیون نے ایک ایسا مرچی کا وار کیا کہ علی اکبر اسے سبلا نہ گیا مقتل لہوف کی روایت یہ ہے کہ جب علی اکبر نے مرچی کا پھڑ کیا علی اکبر سے راوار کے سبلا نہ گیا اپنے ہاتھ میں کوئی سلطنہ کی گردن میں ڈال دیا سلطنہ یہ سمجھا کہ علی اکبر کیا نہ کرتے ہیں کہ آگے کی جانب حملہ کرو وہ سلطنہ علی اکبر کو لے کے آدھا کی صف میں آ گیا جیسے ہی آدھا نے علی اکبر کو دیکھا پتتوں میں سیوں میں امیر لفیر ہوا ارے جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے علی اکبر کی پشت پر مارا علی اکبر نے کہا کیا بتا ادر گری بابا میری مدد کے لیے آئیے یہ دیکھیے نانا رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں کہتے ہیں حسین ہمیں اور انتظار نہ کرو